जो है फ्री मेंस्ट्रुएशन जो प्रोडक्ट्स हैं वो देने शुरू करेंगे सिटी रन फैसिलिटीज के ऊपर अक्टूबर से, एंड ऑफ अक्टूबर से। और इसके ऊपर बात करते हुए आज जो बॉनी क्रॉम्बी जो मेयर हैं मिसेस आगा की, उन्होंने कहा कि रिक्रिएशन सेंटर्स में, कल्चरल सेंटर्स में, लाइब्रेरीज, पार्क्स में के जो वॉशरूम्स हैं उसके अंदर, कोर्ट्स में, सिटी सेंटर ट्रांजिट टर्मिनल्स जो हैं उन सब पे ये मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो कह रहे हैं जी कि इसमें कोई किसी की एज या इनकम का कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये बैरियर्स रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई ख्वातीन जो हैं वो बहुत मुश्किल में आ जाती हैं और उनके पास अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो अब ये हर जगह पे फ्री मौजूद होंगे और इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आएगी इनकी जो प्रोडक्ट्स लेने की वो 165,000 है, लेकिन इसके लिए स्पेशल डिस्पेंसर्स जो लगाए जाएंगे तकरीबन 100 फैसिलिटीज पे, उन डिस्पेंसर्स के ऊपर भी $100,000 जो है उसकी कॉस्ट आएगी। तो भारत सिटी जो है इसको अब आम कर रही है, तो अब देखेंगे। और लेकिन वही होता है कि इस तरह की जब फैसिलिटीज फ्री आप देते हैं ना, तो फिर लोग अब्यूज भी बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल अब देखेंगे क्या होता है इसमें आने वाले दिनों में। मतलब ये एक जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, इनका जो एक सिस्मिक सेंटर है उसने फाइंड आउट किया है कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो रशिया का है, जिसने के कहा है कि जी अब हमारे पास गैस नहीं है और हम उसकी जो है वो अपडेट कर रहे हैं उसको, और उसको जो है वो गैस बिल्कुल रोक दी है उन्होंने, उस पे लीकेज जो है वो आई है। और उसके ऊपर लेकिन जो ये स्टेट्स हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये कहती हैं कि नहीं, ये जो सारा ये अंडरग्राउंड पाइप्स हैं जो कि रशिया से लेकर जर्मनी तक जाती हैं बाल्टिक सी से, तो इसके अंदर अनलेस इंटिल कोई सेबोटाज कोई करने की कोशिश ना करे तो उसमें खराबी नहीं पैदा हो सकती और लीकेज नहीं आ सकती है। तो इन्होंने आज अलेज किया है कि शायद रशिया की तरफ से अलेजली इसको सेबोटाज जो है सारी चीज को करने की कोशिश की है, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं और ईयू की एनर्जी नीड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जॉन लंड जो हैं सिस्मोलॉजिस्ट हैं उपसाला यूनिवर्सिटी में स्वीडन के अंदर, विच इज पार्ट ऑफ स्वीडन सिस्मिक नेटवर्क, तो उनका कहना है जी कि ये हमने डेनिश आइलैंड ऑफ बॉर्नहोल्म में और इसी तरह इसके पहले साउथ ईस्ट में और फिर नॉर्थ ईस्ट में हमने ये फाइंड आउट किया है। और बताने की ये हमें कोशिश की गई है कि जैसे अर्थक्वेक आया है एट द मैग्नीट्यूड ऑफ 2.3, लेकिन हमें ये अर्थक्वेक लग नहीं रहा है, हमें लग रहा है कि ये जानबूझ के सेबोटाज करने की कोशिश की है, इन पाइपलाइंस को उड़ाने की कोशिश की है या कुछ ऐसे किया है, क्योंकि लीक उसमें से हो रहा है। तो और उसमें तो पोलिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेटुजा मोरवेस्की, उन्होंने कहा है कि ये डेफिनेटली एक्ट ऑफ सेबोटाज है। और डेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है मेटे फ्रेडरिकसन, उन्होंने भी कहा है कि मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने गैस जो है रोक दी है और कहा जी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो उसके अंदर फिर जो है वो गैस कैसे है, और अगर मेंटेनेंस का काम था तो गैस को तो रोक देना चाहिए था रशिया के एंड के ऊपर, तो अगर रशिया के एंड से गैस रुकी होती तो फिर लीकेज कैसे होती, है ना। तो बस ये बहुत सारी अब मिलीजुली बातें जो है अब ये कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इनकी अब कंडीशन इनको नजर आ रहा है कि सर्दियों में खराब होने वाली है।
सही। तो होल यूरोप,
सारे यूरोप की। अच्छा जी, ईयू और जो यूएस है उनका आज बड़ा कंसर्न आया है, क्योंकि सर्बिया जो है आपको पता ही है कि सर्बियन लीडर्स की मुलाकातें, ये जो 77th यूएनजीए की मीटिंग हो रही थी उसमें इनकी हुई है रशियन डेलीगेट्स के साथ, खासतौर पर जो उनके फॉरन मिनिस्टर है सर्जे लेवरोव, उनके साथ हुई है। और उन्होंने कहा है जी कि हम लॉन्ग टर्म कुछ पॉलिसी मैटर्स और बायोलेटरल रिलेशंस और मल्टीलेटरल और बायोलेटरल एक्टिविटीज शुरू करना चाहते हैं रशिया के साथ। इसके ऊपर ईयू और यूएस ने बड़ा आज रिएक्शन शो किया है, और उन्होंने कहा है जी कि तुम तो कहते हो कि हम जो है नेटो का और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुम्हारी अगर ये कमिटमेंट है कि तुम नेटो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो फिर तुम रशिया के साथ कैसे हाथ बढ़ा रहे हो? तो रशिया के साथ तो आप हाथ बढ़ा ही नहीं सकते फिर। तो सर्बियन जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं निकोला सेलोवगिक, उन्होंने बोला है कि नहीं, हमारा इसके अंदर कोई, हम उनके साथ सिक्योरिटी डील रशिया के साथ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बायोलेटरल टाइज को बढ़ाना चाहते हैं। और वैसे तो इन्होंने कहा था कि ये जो कुछ भी वॉर चल रही है इन दोनों के बीच में वो ठीक नहीं है, लेकिन जो रशियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये भी जो कमेंट्स हैं उनको भी जरा, और ये सारी चीज को ओवरऑल भी जरा डाउन प्ले करने की कोशिश की है कि कोई सिक्योरिटी ये हमारे इनके साथ प्रोटोकॉल्स या वो साइन नहीं हम कर रहे कोई डील, ये तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जरा इनके साथ टाइज बस अच्छे रखें जो है वो. तो उसके लिए जो है ये ईयू जो है आज बहुत भड़का हुआ है, वो कहते हैं जी नहीं. अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि इटली के अंदर जो हैं प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल आ सकती हैं, जॉर्जिया मेलोनी, और बड़ी एंटी जो हैं ये इमिग्रेशन है. तो फाइनली ये अब फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगी इटली की. लेकिन जो यूरोप है उसके ऊपर उसमें बड़ा कंसर्न है इसके खिलाफ, क्योंकि बेसिकली ये जो इनकी पार्टी है फ्रेटेलिटी द इटालिया, ब्रदर्स ऑफ इटली, इसका मतलब है ये जो हैं जरा फैशिस्ट हैं थोड़े से. और ये एंटी इमिग्रेशन खाली नहीं है, ये एंटी अबॉर्शन भी हैं और भी जरा क्रैक डाउन कुछ लोगों पे करना चाहते हैं. तो उसके लिए आज काफी लोग जो हैं उनका इसके ऊपर जो है वो आया है, रिएक्शन आया है. ये पार्टी जो है इट इज लेड बाय फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर मैटियो सेल्विनी और फोर्जा इटालिया, और एंड इट इज हेडेड बाय जो फॉर्मर इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे सिल्वियो बर्लुस्कोनी, उनसे. अच्छा, अब जो अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि जी हम इटली की जो नई गवर्नमेंट है उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम उनको एनकरेज करते हैं कि ये जरा ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है जरा गौर दें. फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रों साहब, उन्होंने कहा जी कि हम जो इटालियंस ने अपना डेमोक्रेटिक जो राइट टू चूज हर किया है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बर्न, उनका ये ख्याल नहीं है. वो कहते हैं जी कि हम कॉन्स्टेंटली ये जो है अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर इनकी ह्यूमन राइट्स की और अबॉर्शन के ऊपर जो बातचीत होगी उसको हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एंटी अबॉर्शनिस्ट हैं और बहुत ही ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी
राइट विंग
पार्टी में.
यस, राइट विंग है. यस,
तो ये है. लेकिन जाहिर है कि फ्रांस का जो फार राइट विंग के जो पार्टीज हैं, जो कि मरीन लपेन और एरिक जमर वगैरह जो हैं, उन्होंने बड़ा इनको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया. जाहिर है कि उनकी जो है राइट विंग के साथ जो है वो भी राइट विंग है और ये भी है. जर्मन पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने भी बड़ा जो है इसके ऊपर कंसर्न शो किया है, और जर्मन कुछ तो एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये जो इनकी जो ओपन फैशिस्ट स्टेटमेंट्स हैं इनकी मेलोनी साहिबा की, वो बड़ी ही खतरनाक हैं. और आजकल का जो यूरोप है उसके अंदर ये सारे कमेंट्स जो हैं वो ज्यादा पसंद नहीं किए जाते और एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हम तो इनको बड़े गौर से देख रहे होंगे कि ये अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे. इसी तरह जो स्पेनिश जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉश मैनुअल एल्बेरेज, उन्होंने भी कहा है कि ये जो इस तरह की जो पॉपुलिस्ट किस्म की जो पार्टीज आती हैं ये चार दिनों के लिए आती हैं, क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज अब यूरोप में चल नहीं सकती हैं, क्योंकि यूरोप में तो आपको पता है ये कोई भेदभाव करते नहीं है. अब ये कास्ट का, क्रीड का, रंग का, गोरा है, काला है, नीला है, पीला, लंबा ऊंचा है, छोटा है. तो वो कहते हैं कि ये इनकी पॉलिसीज जो हैं ये अभी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं, तो चार दिन तो चल सकती हैं लेकिन ये लॉन्ग वे में नहीं चलेंगी, क्योंकि ये बड़े फिर बैडली क्रैश करते हैं. यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है उन्होंने भी कहा है जी कि ये जो इनका पॉपुलिस्ट पार्टी है ये सामने तो आ गई है, लेकिन हम भी होप करते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे और चीजों में. तो मतलब यूरोप के अंदर काफी जो है इसके ऊपर इनके आने के ऊपर, हाँ इनके आने के ऊपर काफी ऑपोजिशन है, और वो बड़े गौर से अब इनको देखेंगे. वो कह रहे हैं सारे यूरोपियन यूनियन में कि अगर इनको हमारा एलआई बने रहना है तो फिर इनको ये जो इनकी पॉलिसीज फैशिस्ट हैं ये नहीं ये चला पाएंगी.
और वो जो सिल्विया बर्लुस्कोनी की बात कर रही हैं आप, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं.
हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली. तो बस अब देखेंगे क्या होता है जी आने वाले दिनों में. अच्छा जनाब, कल अगर आप लोग देख रहे थे तो नासा जो है उसने एक बड़ा जबरदस्त एक वो मिशन किया है, और दैट इज अमेजिंग अमेजिंग है. और बड़ी वहां पे नासा के जो सेंटर में शोर हंगामा मचा चीयर्स का. आई मीन ऑफकोर्स इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक अपना किया है स्पेस क्राफ्ट बनाया है, क्यूब शेप्ड इम्पैक्टर व्हीकल, जिसका के साइज जो है एक वेंडिंग मशीन के बराबर है. और ये जाके उन्होंने जानबूझ के टकराया है एक एस्टेरॉयड से जिसका के नाम इन्होंने डिमॉर्फस रखा है. और ये कहते हैं जी कि इस डिमॉर्फस का जो साइज साइट वाज द साइज ऑफ अ फुटबॉल स्टेडियम उसके साथ. तो जब तक इसकी टक्कर नहीं हो गई तो वो लाइव ट्रांसमिशन इनकी नासा में चल रही थी, और इनको फिर पता चला जब जाहिर है कि ट्रांसमिशन बंद हो गई कि अब जी उसने टक्कर मार ली है इसकी,
और धमाका हुआ है,
और धमाका वहां पे हुआ है. तो ये जो मिशन ऑपरेशन सेंटर था वॉशिंगटन डीसी के बाहर उस पर इन्होंने किया है. और ये इसलिए इन्होंने किया, वो कहते हैं जी हमने इसलिए किया है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कभी अगर इस तरह के एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो अर्थ की तरफ आ रहे हों तो क्या उनका ट्रेजेक्ट्री हम चेंज कर सकते हैं काइनेटिक फोर्स से, या उनको वहीं पे फिजा में तबाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये फ्यूचर की सारी
ये कामयाब हो गए इस चीज में,
कामयाब हो गए,
उनको पता लग गया कि कोई ऐसा कोई फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉयड है जो अर्थ की तरफ आ रहा है और अर्थ से आके टकराए, तो उससे पहले ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे।
जी जी जी।
तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दिस।
तो ये फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है जनाब।
तो अब ऊपर भी लड़ाइयां शुरू हो गई,
लड़ाइयां शुरू हो गई हैं बिल्कुल मौजूद भाई। तो अब फिर ऊपर भी जाने का फायदा नहीं है, सही रहो पागल हो ऐसा लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के ऊपर मार्स पे गए हैं, सही रहो जी,
वहां भी गिरा देंगे, इनको पता लग गया,
धक्का मार देंगे वहां से, फिर वहां से तो आप नीचे गिर भी सकते, बस वो उधर ही फिरते रहेंगे, आप
फिरते रहेंगे
में घूमते रहेंगे गोल गोल। अच्छा जनाब, रॉयटर्स की आज एक खबर है और रॉयटर्स की ये जो खबर है ये कहती है कि आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले ये एक लेडी थी और इन्होंने इल्जाम लगाया था ट्रंप साहब के ऊपर कि जी उसने मुझे रेप किया है। तो ये जो है आज इसका इनका नाम था, ये ऑथर हैं, राइटर हैं जॉन कैरोल। तो इन्होंने कहा था कि जी ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने एक डेफिमेशन केस लॉसूट डाली थी कि इन्होंने मुझे रेप किया है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो फेडरल अपील्स कोर्ट है उसने ट्रंप साहब के खिलाफ अभी कोई रूलिंग तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि ये रेप के चार्जेस जो थे ये जब ये यूएस प्रेसिडेंट थे उस वक्त इनके ऊपर लगाए गए हैं, तो हमको इसके ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए कि जब ये यूएस प्रेसिडेंट थे तो तब इन्होंने तो नहीं रेप किया ना इस लड़की को। तो इसलिए क्योंकि इनका जो है लॉयर जो है ट्रंप साहब का, वो कहता है जी कि ट्रंप साहब जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट जो है इनको मैनहट्टन यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें इन्होंने किया था अपील की थी इस लेडी ने कैरोल ने, वो कहते हैं जी वो इनको किसी भी तरह की इस तरह की लायबिलिटी से शील्ड करती है। तो अब आज उन्होंने अपील्स कोर्ट में कहा है कि अगर ये शील्ड करती है और अगर ये जो है इस तरह की इन्होंने लगाई है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो डेफिमेशन केस इसने इनके ऊपर ट्रंप साहब के ऊपर नवंबर 2019 में डाला है जबकि ये ऑलरेडी 3 साल इनको हो गए थे व्हाइट हाउस में, तो क्या उस वक्त इन्होंने कुछ ऐसी गलत हरकत की थी व्हाइल ही वाज द यूएस प्रेसिडेंट या उससे कुछ पहले था? तो अगर तो उससे पहले था और ये अगर गवर्नमेंट कोई जो है वो ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे थे तो उसको नए पिक्चर में देखना पड़ेगा, नए लाइट में देखना पड़ेगा। तो अगर ये प्रेसिडेंट होते तो फिर बिल्कुल ही पिक्चर बदल जाती, उस लाइट में हमको देखना पड़ता। तो हमको कुछ अभी टाइम चाहिए। तो सेकंड यूएस सर्किट कोर्ट जो है उसने आज ऑफ अपील्स इन मैनहट्टन जो है उसने कहा है कि हमको ये लॉज जो हैं ये सारे बड़े गौर से देखने पड़ेंगे और फिर हमें देखना पड़ेगा। आपको पता ही है कि ट्रंप साहब के ऊपर जब इसने इल्जाम लगाए थे तो ट्रंप साहब ने बड़ा मीन जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रही है और पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश कर रही है और वैसे भी शी इज नॉट माई टाइप। जब ट्रंप साहब जो थे प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने इस लड़की के औरत के बारे में बड़ा मीन लिखा था, शी इज नॉट माई टाइप।
ट्रंप साहब
ही वाओ। तो ये जनाब अब वो कहती है, वो लड़की कहती है कि ये 1996 में एक ड्रेसिंग रूम था बर्ज ऑफ गुडमैन डिपार्टमेंटल स्टोर का, उसमें इन्होंने मुझे रेप किया था। तो बहरहाल जी अब उधर मिड टाउन मैनहट्टन में तो तभी उसने इधर केस डाला था इनके अगेंस्ट। बहरहाल जी अब ये और इसके फर्दर इसके ऊपर काम होगा। एसोसिएटेड प्रेस की जनाब एक न्यूज है और इस न्यूज के मुताबिक जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं वो अब साउथ कोरियन लीडर्स जो हैं उनके साथ अब मुलाकातें करेंगी और उसकी वजह यह है कि साउथ कोरिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि भई ये जो नॉर्थ कोरिया है इसके लीडर्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली बैलिस्टिक मिसल्स के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसल्स के ये तजर्बे कर रहे हैं तो हमको बड़ा कंसर्न है। तो ये उनको बताने गई है कि जी पायनसीज वाले नाल खड़ोते हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं है। और मतलब है चीजें चूंकि खराब हो गई हैं क्योंकि ट्रंप साहब के जमाने में आपको पता ही है कि 2019 में उन्होंने एक चक्कर भी लगाया था वहां पे नॉर्थ कोरिया में और गए थे इनके किम जोंग उन जो इनके लीडर हैं उनसे भी ये मिले थे और फिर उन्होंने बड़ी तारीफें भी इनकी की थी कि ये बड़ा अच्छा बंदा है। तो चीजें जो है काफी ठंडी हुई हुई थी। अब चूंकि बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है चीजें जो है बड़ी वो हाइप अप हो गई हैं, 24 घंटे वो अमेरिकन शिप्स जो हैं वो भी फिरते रहते हैं यहां पे, तो उसकी वजह से ये इन्होंने कुछ तजर्बे किए हैं जिसकी वजह से साउथ का कंसर्न है। बेसिकली जो ये हैं कमला हैरिस साहिबा जो हैं ये तो वहां पे गई हैं जापान में, क्योंकि एबे शिंजो साहब जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे उनका आज फ्यूनरल था, ही वॉज लाइंग इन स्टेट, तो आज उनका था, उनको असैसिनेट किया गया था जुलाई में, तो आज उनके फ्यूनरल था, तो उसमें ये भी और भी दुनिया के बहुत सारे लीडर्स गए हैं, और उसके बाद फिर जो है ये अब वहां पे गए हैं, तो वो आज उन्होंने बड़ी स्पीच भी की है कमला हैरिस ने, उन्होंने कहा है कि जी हम दोनों जो हैं साउथ कोरिया और जो अमेरिकन फोर्सेज हैं वो इकट्ठे लड़ी हैं, जिस वक्त ये पेनिनसुला को डिवाइड किया था साउथ में और नॉर्थ में, तो इसलिए हमारी तो हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है, और मतलब है इन शॉर्ट पायाना सी थोड़े पीछे खड़े होते हैं, असी थोड़े पीछे खड़े होते हैं, डरन की गल नहीं है, तो फिर ये ऐसे। अच्छा जी, फिच रेटिंग जो है, फिच रेटिंग सर्विसेज वाले जो हैं उन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ है और जो उनका जो अब डेफिसिट चल रहा है उसके ऊपर आज एक रिपोर्ट दी है, और फिच रेटिंग सर्विसेज के मुताबिक फर्स्ट क्वार्टर में जो इस फिस्कल ईयर का है 2022-23 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इट इज 9-year high एंड इट इज टचिंग 3.4% ऑफ द GDP। इसमें जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि ट्रेड डेफिसिट अप्रैल से लेकर जुलाई 2022 में 96.5 बिलियन US डॉलर को टच कर गया है, और वो कहते हैं कि इन द लास्ट फोर ईयर्स ऑन एवरेज मिनरल फ्यूल आइटम्स जो हैं सिर्फ उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है 93.31 बिलियन एनुअली टू ट्रेड डेफिसिट, यानी इसमें सिर्फ ये एक सेक्टर का इतना बड़ा हाथ है। वो कहते हैं जी कि क्वार्टर वन में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू जो पिछले जो ईयर्स थे, और उसकी वजह बहुत सारी हैं, उसमें से एक वजह यह है कि यूएस डॉलर जो है वो रुपी के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हुआ है, और जो क्रूड ऑयल की जो ऑयल की प्राइसेज है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज्यादा राइज कर गई हैं। ऑयल की प्राइसेज जो थी 87 डॉलर पर बैरल थी जनवरी 2022 में, जो कि जून में पहुंचते पहुंचते 118 डॉलर पर बैरल हो गई, तो उसकी वजह से जो है इंडिया को काफी नुकसान हुआ है, और इसीलिए आपको पता है कि उसके बाद फिर इंडिया ने काफी सारी रशिया के साथ जो है ऑयल की डील्स की थी ताकि उनको चीप ऑयल मिल सके, तो
जो राइस है उसमें भी ड्यूटीज लगाती है,
ड्यूटीज लगाती है, हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे है। तो वो कह रहे हैं जी कि अब ये ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत बढ़ गया और इसको कम करने की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज है जी, और इसके मुताबिक कर्नाटका का जो गडक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक हेडमास्टर जो है उसको पकड़ के मारा पीटा है और हैकल किया है काफी, ये जो एक्टिविस्ट थे श्री रामा सेना के, और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह यह थी कि हेडमास्टर साहब ने बच्चों को कहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके ऊपर जो है आप एक एसे लिखें। जो प्रिंसिपल हैं हेडमास्टर जो हैं अब्दुल मुनाफर बीजापुर, उन्होंने ये बच्चों को दिया था, और पुलिस को बयान देते हुए उन्होंने कहा जी हम ये कॉम्पिटिशन इसलिए कराते हैं कि हमारे पास कभी कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं जी कि बच्चों की जो राइटिंग स्किल है उसको बढ़ाने के लिए हम आपको डोनेशन देने को तैयार हैं, तो आप इनसे एसेज लिखवाएं। तो उस सिलसिले में मैंने इनको कहा था बच्चों को कि एक एसे कॉम्पिटिशन होगा, और इस दफा मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे आप लिखें, और उससे पहले, और ये आम चीज है, हम इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिशन आते हैं, इससे पहले हमने कनाका दासा, पुरंदारा दासा और इस तरह की बहुत सारी पर्सनालिटीज के ऊपर हमने ऐसे कॉम्पिटिशन्स कराए हैं ताकि बच्चों का जो है राइटिंग स्किल अच्छी हो सके। तो इसमें जो रामा सेना के जो लोग थे वो आए और उन्होंने हेडमास्टर साहब को मारा पीटा, और उन्होंने पुलिस को अपना बयान दिया, उन्होंने पुलिस को कहा जी कि नहीं, ये चूंकि मुसलमान हेडमास्टर है अब्दुल मुनाफिर बीजापुर, और ये जो है ये रिलीजियस इनटॉलरेंस पैदा कर रहा है अपने जो है इसमें स्कूल के अंदर, ये बच्चों को जो है इस्लाम को प्रमोट करने को कह रहा है दूसरे रिलीजन्स के ऊपर, और ये दूसरे रिलीजन्स के ऊपर रख रहा है अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को, तो उसके लिए हमने किया। बहरहाल वहां पे लोग काफी शॉक्ड हुए जब इन्होंने आके मारपीट की हेडमास्टर के साथ, तो बहरहाल अब एक केस इसके ऊपर बनाया, तो अब देखेंगे कि क्या होएगा। ये जो न्यूज है जी ये आज अल जजीरा ने भी की है कवर और AFP ने भी की, और इसके मुताबिक इंडिया के अंदर पुलिस जो है अब एक टीचर को ढूंढ रही है क्योंकि उसने एक 15 साल के दलित बच्चे को जो है रॉड से मारा और ठुड्डे मारे और इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई, और जो है वो बच्चा 15 साल का था और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उस्ताद ने उसको कहा कि तुम सोशल के स्पेलिंग्स लिखो एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में उसने सोशल को मिस स्पेल कर दिया, तो उसके ऊपर उस्ताद जो है इतना गुस्से हो गया कि रॉड्स जो हैं उससे मार मार के उस बच्चे की जान ले ली। उसके बाद क्या हुआ जी कि उस स्कूल के बाहर जो है दलित जो कम्युनिटी थी उन्होंने धरना लगाया हुआ था, और उसके बाद फिर वहां पे पुलिस आई, वो बहुत ज्यादा बच्चा चूंकि इंजर्ड था उसको लेकर तो गए हॉस्पिटल में लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो ये अब जो है वहां पे काफी वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पुलिस ने वैसे तो इनको रोका है लेकिन पुलिस कह रही है कि अब हम इसके ऊपर प्रोब बिठाएंगे, लेकिन वो उस्ताद जो है वो भाग गया हुआ है वहां से, तो पुलिस उसको ढूंढ रही है।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 905-874-7171।
From helmets to sunscreen, we do everything we can to keep our kids safe. So, how can the COVID-19 vaccine help protect them? COVID-19 vaccines can help keep children safe from severe illness and potential long-term effects of the virus. Millions of children in Canada and around the world have already been safely vaccinated. Help protect your child. Book their appointment at canada.ca/covid-vaccine. A message from the Government of Canada.
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जानिब से एक पैगाम, क्या आप 24 अक्टूबर को 2022 के म्यूनिसिपल और स्कूल बोर्ड इलेक्शन वाले दिन मसरूफ होंगे, अपना वोट जल्दी दें। एडवांस वोट की तारीख 7, 8, 9, 14, 15 अक्टूबर है। याद रखिए कि आपकी तमाम मालूमात वोटिंग से पहले वोटर्स लिस्ट में दुरुस्त हो। वोटर्स की अहलियत, पोलिंग स्टेशन की लोकेशन, वोटिंग लिस्ट और दीगर मालूमात के लिए विजिट करें brampton.ca/brampton-votes।
जी
अच्छा जनाब, ये अभी हम आपको बताएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे किए हैं आज, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले ये हुआ है कि ये जो अभी 77th ये जो चल रही थी UNGA की मीटिंग, उसमें सारे ही लीडर्स की सारों से मुलाकातें हो रही थी और हमने आपको बताया था कि बीबी जरदारी साहब जो हैं वो ही एज द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वहां पे उन्होंने जो है लोगों से बात की है, एंगेज किया है लोगों के साथ, और वहां पे जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन साहब उनके साथ भी मिले। तो उस वक्त तो एंथनी ब्लिंकन साहब ने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जब भी कभी कोई इस तरह के रिलीफ के जो इश्यूज आते हैं हम आपके साथ होते हैं, हमने हमेशा पाकिस्तान की हेल्प की है पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी में, अभी भी अमरीका जो है आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह बात करते करते एक वहां पर जो रिपोर्टर था उसने उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा जी कि आप अब किस हद तक इनके साथ रिलीफ का काम कर रहे हैं, तो उस पे जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने बड़ा जो है रूडली कह दिया, उन्होंने कहा जी कि आप ये सवाल मेरे से क्या करते हैं, हमने तो जो करना था हमने कर दिया है, अब अगर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो खासतौर पर वो डेट के ऊपर क्वेश्चन था कि डेट रिलीफ आप देंगे या नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा जी हमने तो जो करना था कर लिया, अगर इनको डेट रिलीफ पाकिस्तान को बड़ी चाहिए तो इनका बड़ा यार है चाइना, चाइना के पास जाएं और चाइना से मांगें डेट रिलीफ जो है। तो उसके ऊपर जो है आज हमारे पाकिस्तानी तो जो गवर्नमेंट है माशाल्लाह बेशर्मी में उनको टॉप अवार्ड मिल चुका है, तो वो तो बिल्कुल सारे चुप बैठे हुए हैं राइट, तो उनमें तो कोई इतना नशा है ना होश है ना उनके अंदर कोई गैरत है कि उसका कोई जवाब देते कि भाई साहब जिस वक्त आपकी वॉर हम लड़ रहे थे ना तो 80,000 हमने अपना बंदा मरवाया था आपके लिए, तो आप जो हैं क्या बातें कर रहे हैं, टेडी सी आप जो दो पैसे की सपोर्ट दे देते हैं तो हमने भी आपके लिए बड़ा कुछ किया हुआ है, आपके लिए बड़ी सपोर्ट की है अफगान वॉर में। तो किसी का कोई जी बात नहीं आई पाकिस्तान से, लेकिन जाहिर है कि चाइनीज जो है वो तो बेगैरत नहीं है, जाहिर है। अब चाइनीज जो है उनका बड़ा रिएक्शन आ गया है। चाइना को ये जो बयान है अमरीका का ये बहुत बुरा लगा है। चाइना ने कहा है जी कि हम तो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं और अभी भी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमने जो करना होगा हमें आपको कोई डिक्टेट करने की हमारी हमें पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हमारे जो रिलेशंस पाकिस्तान के साथ हैं वो हैं सो हैं, हम डेट रिलीफ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन तुमको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और तुम इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इतना बुरा वक्त था कि तुमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, बजाय इसके कि तुम उसके साथ खड़े हो, उनकी जो सफरिंग्स है उनको एलिविएट करने की कोशिश करो और उनके लिए कोई अच्छे चार लफ्ज बोल दो, तुम इस तरह की बात जाओ तो तुम मतलब है। चाइना ने कहा अपने काम से काम रखो, मेरा जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है मैं उसको देख लूंगा, मैंने क्या करना है उनके साथ। तो ये आज काफी जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट जो है ये दोनों तरफ से जो है वो चलता रहा है, क्योंकि उसने बड़ा इस तरह का तंज किया कि वो तो जी चाइना तो बड़ा क्लोज पार्टनर है ना पाकिस्तान का, तो चाइना को कहे कि तुम्हारा डेट रिलीफ तुमको दे, हमसे क्यों बात कर रहे हैं। तो उस पर फिर चाइनीज जो है वो भी भड़क गए, तो उन्होंने ये बात की है। अच्छा जी, ये जो मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं एससीओ की और यहां पे शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं और 77th यूएनजीए की भी जो मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं, तो आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि यूएनजीए में जाके मैंने पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त तरीके से जो फ्लड में जो हमें प्रॉब्लम्स आई उनको मैंने हाईलाइट किया उस इश्यूज को, और मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पाकिस्तान का केस लड़ा और मैं प्रेसिडेंट शी से भी मिला और मैं प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिला और उनके से मैंने कश्मीर और पैलेस्टाइन और इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की और मैंने जो हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है उसको भी मैंने बड़ा कंडेम किया, तो मैंने पाकिस्तान की जो है वो बताई कि हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो फ्लड्स हैं उन्होंने हमारा बड़ा बुरा हाल किया हुआ है और हमको जो है ये सपोर्ट चाहिए और यूनाइटेड नेशंस की भी सपोर्ट चाहिए। तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस जो हैं उन्होंने भी, वो भी पीपल ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने भी बात की थी, वो आए भी थे और उन्होंने भी कहा है कि हम इसको डिले नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। तो जो पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है दैट इज गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल टू रिकनेक्ट विद द वर्ल्ड, क्योंकि पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था और उसने पाकिस्तान को बड़ा बैड नेम दिया है और जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं आपको पता नहीं है कि उन फ्रेंडली नेशंस ने मेरे साथ क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैं बता नहीं सकता हूं कि हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई की उसके बारे में जो हमारे फ्रेंडली नेशंस थे उन्होंने मुझे क्या बताया, और वो स्टेट सीक्रेट्स होते हैं वो मैं आपको यहां पर नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पसीने छूट जाएं। और उन्होंने कहा जी कि आपकी पुरानी गवर्नमेंट बड़ी बदतमीज थी और हमारे साथ बड़े डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात करती थी। हाँ जी, तो पायन आपने जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मूव लाया उससे दो दिन पहले तो वो खत्म हुई थी सारी जो मीटिंग चल रही थी इस्लामाबाद में, सारे जो इस्लामिक कंट्रीज के हेड आए हुए थे, तो इतने ही बदतमीज थे ये तो फिर उन बदतमीजों से मिलने के लिए सारी दुनिया इस्लामाबाद क्यों आई थी पायन है? तो ये जी आज उन्होंने बातें की हैं शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में। अच्छा जी, इसके अलावा जो इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्ला साहब जो है ही इज बैक ऑल्सो, आ गए हैं उसे थे ना बड़े उसमें तो आ गए हैं। आज ये एक टीवी के प्रोग्राम में बात कर रहे थे और उस टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए राणा सलाउल्ला साहब ने कहा है जी कि आपने आप ये कह रहे हैं कि पीएमओ की बहुत सारी जो हैं वो वीडियोस हैं, वीडियोस तो इमरान खान साहब की भी बहुत हैं और इमरान खान की वो वीडियोस जो हैं वो ना देखने के काबिल है ना दिखाने के काबिल है, लेकिन फिर भी मैंने जरूर देखी है और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप शर्मिंदगी से आप डूब मरेंगे, वो इतनी बेहुदा जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स हैं इमरान खान से के पीटीआई और उन सारों से रिलेटेड जो हैं, और ये जो वीडियो सारी सामने आई हैं इससे कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की रेप्यूटेशन को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। और जो है मैं आपको बता सकता हूं कि इसके अलावा पीटीआई के जो आजाद जम्मू और कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वो बाकी के भी ये जो इनके लोग हैं कैसी कैसी उनकी बेहुदा किस्म की वीडियोज हैं जो मेरे पास हैं तो वो मैं सामने ला सकता हूं। और फिर उन्होंने कहा खान को अब आने दो इस्लामाबाद, मैंने उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, वो जब आएगा तो वो देखेगा मैं उसके साथ क्या करूंगा। तो जनाब ये राणा सलाउल्ला साहब ने आज ये बातें की हैं। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि इसहाक डार साहब जो है वापस आ रहे हैं, तो आज वो वापस पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और आज उन्होंने जो है सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब आज उन्होंने उनको ओथ एडमिनिस्टर किया है एज अ सेनेटर, और ظاہر ہے کہ اس بیچ میں جو پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور وہ جو اسپیکر کا جو ڈائس تھا اس کے گرد آ کے وہ جمع ہو گئے اور وہ جو ایجنڈا تھا میٹنگ کا اس کی کاپیز بھی انہوں نے پڑھی تو لیکن جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ سب کو کہتے رہے کہ بھئی آپ آرام سے بیٹھیں کیونکہ پی ڈی ایم کے کچھ جو ممبرس تھے ان کو مبارکیں دے رہے تھے اور کل جو اب ہے یہ جو فارن منسٹر جو ہیں یہ اسحاق ڈار صاحب یہ ایز اے فارن منسٹر یہ اب ہی ول بی سورن آن ٹمورو اور جو پریزیڈنٹ الوی ہیں وہ ان کو ایوان صدر میں ایڈمنسٹر کریں گے اوتھ اور اس موقع پہ بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ بائی دا گریس آف گاڈ میں اپنے ملک میں واپس آ گیا ہوں اور نواز شریف صاحب نے مجھے یہ دی ہے ڈیوٹی کہ میں پاکستان کو اکنامک کرائسس سے باہر لاؤں تو آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ میں پاکستان کو اکنامک کرائسس سے باہر لاؤں. پاکستان کے اندر جی جو ڈیزاسٹر اسیسمنٹ جو کمیٹی ہے اس نے اندازہ لگایا ہے کہ ان فلڈز کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو 28 بلین US ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور پاورٹی جو ہے اس کی وجہ سے وہ بھی 5% بڑھ جائے گی اور اس میں 9 to 12 million لوگ جو اور ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے. تقریباً 1.8 سے 2 ملین جابز جو ہیں دے ور لاسٹ اور جو لانگ ٹرم کنسٹرکشن ہے اس کو تقریباً 2 سے 10 سال تک لگ سکتے ہیں. ایوریج انفلیشن جو ہے وہ 23 سے 25% کو ٹچ کر رہی ہے. ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ اب نیگیٹو میں چلے گی 0.7% ٹو -2.1%. ایکسپورٹ لاسز جو ہیں وہ 3 بلین US ڈالرز کے ہیں. ڈیمیجز ان بلوچستان جو ہیں وہ ہیں 3.04 بلین, پنجاب 0.55 بلین, کے پی کے 0.54 بلین, آزاد جموں اینڈ کشمیر 0.02 بلین, گلگت بلتستان 0.03 بلین. تو ٹوٹل لاسز جو ہیں یہ ان میں جو ہیں کافی ہیں اور فیڈرل منسٹریز اور ڈویژنز کی جو منسٹری ہے اس کو 2.9 بلین کے, پاکستان ریلویز کو 2.4 بلین, منسٹری آف ہاؤسنگ کو 0.02 بلین, نیشنل ہائی وے اینڈ پوسٹ آفیسز 0.2 بلین اور منسٹری آف واٹر جو ہیں اس کو 0.29 بلین کے لاسز ہیں. تو ان کو ریکور کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. عوامی مسلم لیگ کے جو ہیڈ ہیں شیخ رشید احمد صاحب اور پی ٹی آئی میں انٹیریئر منسٹر بھی تھے, انہوں نے ایک پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ شہباز شریف کی جو 72 ممبر کیبنٹ ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے اینڈ دس از اے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 92(1) اور جو ہے یہ اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر 34 فیڈرل منسٹرز ہیں, 7 اسٹیٹ منسٹرز ہیں, 4 ایڈوائزرز ہیں, 27 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. لیکن اس کے اوپر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ ہیں وہ بہت زیادہ بھڑک گئے. انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کو بے تحاشا ڈانٹا, انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی خراب قسم کا مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو ایگزیمپلری فائن کرنا چاہیے کیوں تاکہ آپ کورٹ کا وقت پھر سے ضائع نہ کر سکیں. ان کے کاؤنسل نے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کے سے بات کیا کہ اور کوئی فورم نہیں ہے جس میں ہم یہ شکایت لے جا سکتے ہیں سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھیجے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ بات کریں, کورٹ کے اندر یہ بلا وجہ کے جو ہے قصے لا کے کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع مت کریں. ٹھیک ہے جی, ایسے ہے. اچھا جناب, رنویر کپور صاحب جو ہیں وہ اب کل اپنی 40th برتھ ڈے منائیں گے, لیکن آج سے ہی سیلیبریشن شروع ہو گئی ہیں ان کی جو ہیں, جو فیملی نے آج سے ہی سیلیبریشن شروع کر دی ہیں. لیکن یہ جو ڈفرنٹ بات ہوئے گی اس دفعہ کی ان کی 40th برتھ ڈے جو یہ منائیں گے کل اس کی, کہ یہ پہلی ان کی برتھ ڈے ہوئے گی آفٹر میرج ٹو عالیہ بھٹ, جو کہ انہوں نے ان سے شادی کی تھی 14 اپریل کو اپنے ممبئی کے گھر میں اپنے بہت کلوز فرینڈز اور فیملی کے ساتھ. تو اس کے لیے جو ہے وہ آج بڑی پیاری تصویریں ان کی جو ہیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں ان کی وائف اور ان کی فیملی کے ساتھ. اینڈ جناب, آج یش چوپڑا صاحب اگر زندہ ہوتے تو اپنا 90th جو ہے برتھ اینیورسری مناتے. یش چوپڑا صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہی ہے انڈیا کے مان ہاس فلم میکر تھے اور کنگ آف رومانس ان کو کہا جاتا تھا. بڑی زبردست فلمیں وقت, سلسلہ, دیوار, کبھی کبھی, ترشول, چاندنی, اس طرح کی انہوں نے بڑی زبردست.
ان کا بیٹا بھی تو فلموں میں
جی 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 وہی تو ان کا چلاتا ہے نا, یہ یش راج موویز جو ہیں وہ چلاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی October 13, 2012 میں 80 ایئرز کی ایج میں ملٹیپل آرگن فیلئر کی وجہ سے, اور اس سے پہلے ان کو ڈینگی ہو گیا تھا. ان کی پیدائش ہوئی تھی ایک پنجابی ہندو کھتری فیملی میں آن September 27, 1932 ان لاہور. لاہور میں یہ پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد 5 ڈیکیڈز تک ان کا بلاک بسٹر موویز دینے کا جو کریئر ہے ہالی ووڈ میں وہ چلتا رہا. تو آج لوگوں نے ان کو किंग ऑफ रोमांस को याद किया। ए आर रहमान साहब जो हैं बड़े भड़के हुए हैं, बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि अपनी ओरिजिनलिटी तो म्यूजिक डायरेक्टर्स में रही नहीं है, पुराने जो गाने हैं उनको रीमिक्स कर करके जो हैं वो लेकर आ रहे हैं सामने। उसके ऊपर ये बड़े भड़के हुए थे। ए आर रहमान साहब का कहना है जी कि क्यों मेरी और मणि रत्नम की इज्जत की जाती है, मणि रत्नम और मेरी इसलिए की जाती है कि हम ओरिजिनल गाने लाते हैं, फ्रेश लाते हैं गाने। तो इनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो म्यूजिशियन ना सिर्फ दूसरे बल्कि आपके गानों का भी रीमिक्स लेकर आते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो कहते हैं जी मैं तो जब भी सुनता हूं तो मैं देखता हूं उसको और डिस्टॉर्ट कर दिया है, क्योंकि एक कंपोजर का अपना एक इंटेंशन और स्टाइल होता है, उसको जब आप रीमिक्स करते हैं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और लोग कहते हैं कि मैं तो जी री इमेजिन कर रहा हूं जब मैं ये रीमिक्स कर रहा हूं। तो उस पर आज ए आर रहमान साहब ने कहा तुम कौन होते हो री इमेजिन करने वाले एक ओरिजिनल आदमी के ओरिजिनल काम को, तो तुमको थोड़ा रिस्पेक्ट शो करना चाहिए और ये बड़ा ग्रे एरिया है और इसके ऊपर जो है चीजों को जरा सॉर्ट हमको करने की जरूरत है। पाकिस्तान के क्लाइंबर जो है जी साजिद अली सतपारा, वो जनाब आप दुनिया की 8वीं ऊंची तरीन जो पीक है माउंट मनासलू जो कि नेपाल के अंदर है, 8,163 मीटर्स उसकी हाइट है, उसको अब जो है ये उसके ऊपर चढ़ेंगे। और इनका मिशन जो था सितंबर 6 से शुरू हुआ था, विच इज पार्ट ऑफ माउंट मनासलू एक्सपीडिशन 2022, और इसको ऑर्गेनाइज किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने, निपलीज जो एडवेंचर कंपनी है सेवन स्मिथ ट्रैक्स, तो उसके अंदर अब ये हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान हॉकी है जी जो कि 29th अजलान शाह कप में आपको नजर आएगी, वो बहुत ही डिफरेंट स्क्वाड होएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो ट्रॉफी ये जो अजलान शाह कप हो रहा है इपो में नवंबर 1 से 10 में, उसमें पाकिस्तान नेशनल टीम के 9 प्लेयर्स नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी जो स्टेडियम में जो ये कैंप लगा हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये लोग जो हैं गए हुए हैं इंग्लैंड मैचेस खेलने के लिए, प्रो लीग्स खेलने के लिए। तो अब जो बाकी के 23 प्रोबेबल्स थे वो आ जाए थे कैंप में, और उनके बीच में से अब एक जो है टीम बना के भेजी जाएगी।
क्या बात है जी।
एंड जनाब जो है टिकट जो है फीफा के जो कतर में हो रहा है कतर 2022 वर्ल्ड कप जो है वो अब उसके लिए जो सेकेंड राउंड, ये देखो जी ये जो स्टेडियम जिसके के अंदर इनकी ओपनिंग सेरेमनी भी होने वाली है उसके अंदर ये देखिए जरा,
इसको देख के आप सिर्फ क्या कह सकते हैं,
वाओ वाओ ही कह सकते हैं। लेकिन इस तरह के इन्होंने 7 बनाए हैं स्टेडियम जो कि इसी तरह के स्टनिंग है, और हर स्टेडियम का जो डिजाइन है वो डिफरेंट है। बहरहाल ये मेन है।
अच्छा कहते हैं जी बड़ी बात क्या है, या अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि दे आर मूवेबल, इसके बाद फिर ये डोनेट कर देंगे किसी और कंट्रीज को।
यस ये पूरी चीज क्लैप्सेबल है, इसको सारे को फोल्ड करके ये दूसरी जगह पे भेज सकते हैं और amazing, वो उसी तरह ही ऐसे खड़ा कर
amazing,
सकते हैं।
अमेजिंग
यस 32 टीम्स जनाब इसमें हिस्सा ले रही हैं, और ये नवंबर 20 से ये शुरू होएगा जो मैचेस हैं फीफा के। लेकिन फीफा ने आज कहा है कि 2.4 मिलियन अब टिकट्स जो हैं थर्ड राउंड में और बेचे जाएंगे। इससे पहले भी 2 राउंड्स हुए थे, 520,532 जो हैं टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड थे जुलाई 5 से अगस्त 16 के बीच में, और ज्यादातर ये जो सेल्स हुई हैं कतर, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएस में ज्यादा ये टिकट के सेल्स हुए हैं। और वो कह रहे हैं जी कि अभी भी 3 मिलियन के पास जो है हमारे पास अवेलेबल होंगे लास्ट फेज में, लेकिन लास्ट फेज में बिल्कुल हम जो करेंगे इसमें जो वो कहते हैं जी मोस्ट पॉपुलर जो गेम्स होंगी वो होंगी जो ब्राजील के जो ग्रुप मैचेस होंगे वो होंगे। इसके अलावा कैमरून वर्सेस सर्बिया, पोर्चुगल वर्सेस यूरोगोए, कोस्टारिका वर्सेस जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस डेनमार्क भी बहुत ज्यादा जो हैं वो हाई प्रोफाइल गेम्स होंगे। और इनके
भी मेंशन
कनाडा को नहीं किया, वो कहते हैं हाई प्रोफाइल मैच नहीं गेम नहीं है, इनके सबसे ज्यादा टिकट्स बिके हैं।
आप देखिएगा कनाडा इज गोना सरप्राइज यू।
अच्छा ठीक है जर्स, देखेंगे कनाडा क्या करता है।
कनाडा इज गोना सरप्राइज यू।
तो कतर ने कहा जी कि ये जो हमारा फीफा का हम जो ये जो करवा रहे हैं टूर्नामेंट, 1.2 मिलियन फैंस जो हैं दुनिया से आएंगे, और इतने बेतहाशा लोग जा रहे हैं कि वैसे लग रहा था कि अकोमोडेशन कम पड़ जाएगी, लेकिन अकोमोडेशन अब क्योंकि कतर छोटा सा मुल्क है वो कह रहे हैं जी अकोमोडेशन कम नहीं पड़ेंगी क्योंकि इतने बेतहाशा 5-स्टार होटल्स हैं। लेकिन जो अंदर की खबर आई है वो ये हुई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है कतर की, उसने नवंबर 1 से दिसंबर 23 तक जो विजिट वीजे हैं वो बंद कर दिए हैं। वो कह रहा है कि हम बिल्कुल बंद कर देंगे सिर्फ फीफा के लिए जो टिकट खरीदेगा
डेफिनेटली
वो आ सकेगा। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री ना।
हाँ, नहीं, मगर
एक टाउन जितना पाकिस्तान के एक टाउन जितना मुल्क है वो सारा।
मगर ये कि वो दे हैव द राइट टू डू इट।
तो वो कह रहे हैं हाँ कि फीफा के फैंस को तो हम अकोमोडेट करेंगे सबको, लेकिन वैसे जो घूमने फिरने आ रहा है वो फिर मैचेस के बाद आ जाए।
हाँ, मैचेस के बाद आ जाए क्योंकि मैचेस के बाद उन लोगों को प्रेफर करना चाहिए जो टिकट
उनको उनको अकोमोडेशन हमको देनी है। तो हम सबको वैसे वो
मगर वो कतर से फिर वो दुबई एंड दूसरे जो
हाँ जो जो कि वहां के यूएई के और जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं बहरीन के हैं ओमान के हैं हाँ। वो तो यही कह रहे हैं कि शाम को हम जाएंगे या दिन को हम जाएंगे मैच देखने और शाम को घर आ जाएंगे
वापस आ जाएंगे
या दिन को आ जाएंगे क्योंकि हाँ। वो कतर से जो है एक एक घंटे की फ्लाइट्स हैं सारी ठीक
हाँ।
है एक घंटे में दुबई डेढ़ घंटे में सऊदी इसी तरह को आधे घंटे में बहरीन डेढ़ पौने दो घंटे में उधर ओमान ऐसे करके जो है पास देर जस्ट
यूएई जो है वो
वन आवर 10 मिनट्स हाँ डेढ़ घंटा सऊदी हाफ एन आवर बहरीन ये इस तरह
तो ये जो है ये लोग तो वहां भी ठहर सकते हैं दुबई में और
हाँ तो ज्यादातर तो लोग यही कर रहे हैं माजिद भाई दुबई में दे आर स्टेइंग इन दुबई दे हैव बुक्ड होटल्स देयर वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस जिनके उन्होंने टिकट्स लिए हुए ना जैसे आउट अब ये देखें 32 टीम्स हैं तो चलो आप सोच लें एक्सक्यूज मी 32 ही मैचेस हैं नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच 32 मैचेस उनमें से कोई पांच देखेगा कोई दो देखेगा कोई चार देखेगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर स्टेइंग इन दुबई दे विल स्टे इन दुबई एंड देन दे विल गो टू वॉच ओनली दोज मैचेस एंड इवन कम बैक
और दुबई एंड ये दोहा का जो कंपैरिजन ही नहीं है कुछ
जी,
दुबई तो
जी,
दुबई
जी,
है फिर
दुबई तो दुबई है ना
फिर आई मीन देयर आर स्टे इन दुबई
या शॉपिंग एंड ऑल दैट राइट
वहां की जो एंजॉयमेंट भी वहां दुबई में ही होगी ना
एंजॉयमेंट है शॉपिंग है बेतहाशा दुनिया सारी के टॉप ब्रांड्स जो हैं वो वहां पे हैं तो और ये नहीं होता कि हमारे कनाडा की तरह जैसे आप जाएं कि बड़े बड़े स्टोर
को पुराना कहना
नहीं पुरानी नहीं मैं कह रही हूं कि 10 साल पुराने जो हैं वो चीजें पड़ी हुई हैं जो आप कहते हैं ओ माय गॉड ये अब कौन खरीदेगा इवन जो टॉप ब्रांड्स हैं उनके जो यॉर्क डेल के अंदर जो है कोई मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं स्टैंड अलोन तो बुटीक किसी की है ही नहीं बड़े ब्रांड की इधर तो वहां पे ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल टुडे न्यूयॉर्क फैशन शो एंडेड Within 3 days, the whole collection of those designers, they are in Dubai, right? Similarly, Paris Fashion Show, जैसे ही खत्म हुआ, दो दिन में, the whole collection of all the designers, it is in Dubai. और फिर वो उन सब के, सिर्फ एक उनका जो है standalone stores नहीं है, उनके कई standalone stores हैं. तो जैसे यहाँ पे है ना हमारे कनेडा में कि मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, standalone नहीं है.
अकेले खड़े
हैं. अच्छा अच्छा डंडा लेके अकेले खड़े हैं
अकेले खड़े हैं
अच्छा अकेले खड़े हैं
स्टैंड अलोन है जी उसको स्टैंड अलोन नहीं कहते यहाँ पर
अच्छा अच्छा
अकेले खड़े
अकेले खड़े
हाँ
ठीक है जी डंडा लेके
कहना भी बहुत यहाँ पर
बहुत है
ऐसा बुरा
हम सारे भी अकेला खड़े हैं
आप ना समझे कनाडा को ऐसा कुछ वो कहना में बहुत खड़े हैं अकेले
हाँ जी हाँ जी तो मतलब है कि मैं छोटे से एक ब्रांड की बात करती हूँ स्पेनिश ब्रांड है मसीमो डुटी जैसे फॉर एग्जांपल कितने आपको मसीमो डुटी के स्टोर्स यहाँ पे नजर आते हैं
वन हमने ले ली है मसीमो डुटी
और वन इन जो है वहां पे जो है वो स्क्वायर वन में तो आई मीन ये तो छोटा सा ब्रांड है तो बड़े ब्रांड्स का बहरहाल एनीवेज नो मैच तो वो ये होता है कि वो कलेक्शंस फॉरन विद इन 2 to 3 days जो होती हैं वो वहां पे आ जाती हैं तो आई मीन यू डोंट रियली नीड टू इवन ट्रेवल टू यूरोप यू नो टू बाय दोज गुडीज वो सारा कुछ तो इसलिए लोग ठहरना यूएई में पसंद करते हैं ताकि वो दुबई में शॉपिंग कर सकें
यूएई में भी दुबई में
हाँ यूएई में भी दुबई में डेफिनेटली दे वुडंट लाइक टू गो टू शारजा या अजमान या के यू नो इवन टू अबू धाबी जो कि उनकी राजधानी है जो कैपिटल है नो दे वुड लाइक टू स्टे इन दुबई राइट तो और दुबई का आपको पता ही है कि यूनिक फीचर है दुनिया में वाहिद शायद के द ओनली 7-star and 6-star होटल्स हैं वहां पे दुनिया बाकी में वरना वो कहते हैं जी 5-star इज द गोल्ड 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 जो है वो है स्टैंडर्ड है 5 के बाद कोई लेकिन वहां पे जी 6 or 7-star होटल्स भी हैं तो आप यू कैन अंडरस्टैंड देयर स्टैंडर्ड्स
हम लोग कहते हैं 2-star अपने लगा लेते 5-star के बाद हमने 2 अपने हाँ 2-star लगा दिया मैं कहती हूँ गिनो कितने
वो तो दुनिया ने उनको दिए ना माजिद भाई तो इसलिए लोग कहते हैं जी कि हम वी विल स्टे इन यूएई एंड वी विल कम टू कतर फॉर द मैचेस दैट वी वांट टू वॉच राइट
और फिर दैट मेक्स सेंस
तो सऊदीज तो यही और ये ऑल ऑफ देम दे आर वेरी रिच पीपल राइट तो वो दे विल कम एंड वॉच मैचेस एंड देन
और जो एयरप्लेन फेयर्स होते हैं वो भी दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव
स्पेशल वो एयर क्राफ्ट चला रहे हैं ना एमिरेट्स Etihad and Qatar Airways. They are running special flights between all these states, GCC states ke beech mein. Wo chala rahe hain.
Unhone kai jahaz khareede hain for temporary basis. Khareed diye uske baad bech denge wo.
Nahin bech. इस तरह नहीं है, उनके पास ऑलरेडी भी फ्लीट है, क्योंकि आपको पता है ना रिसेशन आई हुई थी काफी, ये पेंडेमिक में चल रहा था, तो अब जैसे ये फीफा और ये सब चीजें वापस आने लगी हैं तो उनके तैयारी काम में आने लगे हैं अब. तो उन्होंने कहा जी स्पेशल फ्लाइट्स चलाएंगे हम, ज्यादा चलाएंगे उनके बीच में. तो इस तरह से है स्पेशली कतार एयरवेज.
ड्राइव कितने वहां से दुबई से वहां तक ड्राइव कितनी है? कपल ऑफ आवर्स.
या कपल ऑफ आवर्स डेफिनेटली.
बहुत सारे लोग
नहीं नहीं इतनी इतनी आप हेडेक नहीं कर सकते ना, इतनी हेडेक नहीं आप कर सकते कि आप इतना वो
शटल्स चलेंगी बसेस चलेंगी.
नहीं नहीं बसें अभी नहीं चल रही, अभी नहीं चल रही अभी. और लोग जो है ना वो पैहे वाले
हमारे कहना में
फकीर नहीं है उधर कोई, कहना में बसेस तैयारा लेके जाते हैं
हम, कहना में बसेस चला देते हैं.
हाँ नहीं
दो घंटे की ड्राइव है तो बसेस ले,
कोई नहीं जी चार घंटे में पहुंच जाओ.
फुली एयर कंडीशन बसेस.
हाँ जी हाँ जी
फुली एयर कंडीशन बसेस चलाए.
लोग उधर अमीर है जी, वो कहते हैं हमने एयरप्लेन पे जाना है, हमने नहीं गड्डी चड्डी खुद इतनी टेंशन लेके नहीं हमने जाना, तैयारे पे जाएंगे तैयारे पे.
गड्डी भी नहीं लेके जानी है?
नहीं गड्डी भी नहीं लेके
जानी. नहीं नहीं वो बस में, बस में
बस भी नहीं लेके जानी है.
फर्स्ट
बस से कौन जाता है? बसें वो कहते हैं बसों के अंदर लेबर बैठती है खाली, बड़े लोग नहीं बैठते.
ना 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 ना
इतने सारे सीईओ बैठे हैं,
उन्होंने बसेस देखी नहीं है यहाँ.
हाँ अच्छा अच्छा अच्छा
उधर की आपने नहीं बसेस देखे आप?
हाय हाय माजिद भाई. अच्छा जी एब्सोल्युटली अगर लास्ट न्यूज जो है आज पाकिस्तान को फिर बड़ा प्यारा जवाब मिला है. असल में पाकिस्तान में आई हुई है इंग्लैंड की टीम, आपको पता ही है ना. तो ये असल में टेलीग्राफ की ये न्यूज है जो इंग्लैंड का है, बड़ा बहुत बड़ा न्यूज़पेपर. उसने कहा जी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में मैचेस खेलना चाहते हैं तो न्यूट्रल वेन्यू, एज अ न्यूट्रल वेन्यू जो है हम उनको पेश करने को तैयार हैं. क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि यूएई में न्यूट्रल वेन्यू पे ये दोनों टीमें आके बार बार खेल रही हैं तो यूएई तो बड़ा पैसे कमा रहा है. तो उन्होंने अब सोचा कि इंग्लैंड की हालत बड़ी खराब है तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टिकट बिकते हैं, लोग आते हैं
दुनिया में,
पूरी दुनिया में टीवी राइट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं ये. तो उन्होंने कहा जी हम इंग्लैंड में करने को तैयार हैं. बहरहाल जी क्योंकि उनकी बात हो रही थी पीसीबी के साथ इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड की टीम आई हुई है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये जो करंट हम T20 सीरीज अगर खत्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगर आप इंडिया से खेलना चाहते हैं तो बाकी के मैचेस हम उधर ऑर्गेनाइज करेंगे. बहरहाल जी बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने उनको कहा है जी कि ये डिसीजन बीसीसीआई नहीं बनाती. हाँ तुम्हारा दिमाग ठीक है, बीसीसीआई ये डिसीजन नहीं बनाती, हमारा जो है गवर्नमेंट बनाती है. और जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है तो ये तुम्हारी ड्रीम है, तुम ड्रीम कर रहे हो कि हम शायद पाकिस्तान के साथ खेलेंगे. हम कोई पाकिस्तान शाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे. बीसीसीआई ने कहा है जी कि हमारे जो ये जो सिर्फ हम पाकिस्तान के साथ जो मल्टी टीम इवेंट्स जैसे कि कोई वर्ल्ड कप वगैरह होता है उसके अंदर हम खेलेंगे. और इन दोनों की जो बायलैटरल वाइट बॉल सीरीज लास्ट हुई थी वो इंडिया में हुई थी 2012 में, और टेस्ट सीरीज तो इन दोनों के बीच में 2007 में हुई थी. उसके बाद से ये दोनों टीमें जो हैं बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं खेली. 2007 में टेस्ट जो है ना, टेस्ट सीरीज जो थी 2007 में, और व्हाइट बॉल सीरीज 2012 में इंडिया में.
15 साल हो गए.
जी जी तो इंडिया ने कहा है कि जी ये आप मतलब है, उसने बड़ा लाफ किया है, उन्होंने कहा कि ये हम आपकी सजेशन के ऊपर हंस ही सकते हैं, तो हमें कोई शौक नहीं है पाकिस्तान से खेलने.
नहीं वैसे वैसे यू नो व्हाट इट मेक्स सेंस कि आप कुछ, मगर अगर तीसरी जगह लेनी भी है आपने तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह जो है वो
दुबई है. दो घंटे की फ्लाइट है, दो घंटे की फ्लाइट, दो डेढ़ घंटे की कराची से, दो घंटे दो ढाई घंटे की मुंबई से. आप आए खेलें दो चार दिन उधर रहें भी, शॉपिंग शुपिंग करें चले जाएं. हाँ मतलब है सतवें मल्ले जरूर तुसी इंग्लैंड जाना.
हाँ तो इंग्लैंड में मेरा ख्याल कोई इतना अट्रैक्टिव
नहीं है कुछ भी. हाँ
और वैसे भी अभी जो लास्ट मैचेस हुए थे हमारे तो उसमें इंडियन और पाकिस्तानीज की जो
फैंस
की, हालांकि वो इंग्लैंड के लिए देखा जाए ना तो कोई बड़ी चीज नहीं
है. no,
no, फुटबॉल no, में जो जितने फैंस एग्जिस्टेंस को मार मूर करते हैं वहां पर खुद सारे उसी दे आर नॉट फ्रॉम एनी अदर नेशन.
नो नो नो
सिर्फ अपने लीग के मैचेस में जो उनके
गोरे होते हैं सारे अपने गोरे होते हैं.
हाँ और जो वो लड़ाई झगड़े और मारपीट होती है उनकी तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं. वो समझ रहे हैं कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और थोड़ी लड़ाई झगड़े हो गए तो क्या हो गया.
और वैसे भी बेतहाशा डायस्पोरा जो है इंडियन पाकिस्तानी जो है वो इंग्लैंड में भी रहता है ना. इंग्लैंड में भी रहता तो इंग्लैंड तो बड़ी फर्टाइल जगह है वो भी इसके लिए क्रिकेट मैचेस के लिए. और इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने तो सारी जनता ही आएगी.
नॉट ओनली दैट उनके साथ तो जैसे कि आप ये देख लेना कि दुबई वगैरह में जो मैचेस होते हैं तो वहां पर इंडियन पाकिस्तानी और थोड़े से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं वो आके बैठ के वहां देख लेते हैं, मगर लोकल्स जो है उनको एक क्रिकेट का इतना शौक नहीं है,
उनको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का शौक है, बनाने का शौक।
तो इंग्लैंड में तो ये है कि इंग्लिश खुद ही इंग्लैंड के लोग
वो तो खुद बड़े शौकीन हैं
इसके साथ। हाँ, तो उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सारे क्रिकेट के लोग हैं,
तो वो सारे नेशन है ना,
क्रिकेट नेशन है, तो वो तो वहां पर लोकल्स कितने आएंगे वहां पर, और पाकिस्तान इंडियंस अलग, तो आई मीन एवरी हाउस गोना बी फुल हाउस।
या
सो
लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव अब जो मार्केट हो गई है ना दुबई हो गई है। एक तो दो घंटे जाओ मैचेस खेलो, अगले दिन भी अगर वापस आना है आप अगले दिन वापस आ जाओ, राइट। फॉर एग्जांपल कोई इंजर हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, ओ जी कोई गल नहीं, दो घंटे दी फ्लाइट है, पकड़ो फ्लाइट वापस अपने मुल्क, राइट। एक तो ये है, फिर होटल्स बड़े जबरदस्त हैं, फूड का बड़ा वो है, शॉपिंग बड़ी जबरदस्त है, लाइफस्टाइल बहुत जबरदस्त है, राइट। तो उनको ये दूसरे कंट्रीज में जाने के मजे नहीं है,
मजे नहीं है। और अपनाइयत वहां पर है।
हाँ, अपनाइयत है क्योंकि सारे वो इंडियन पाकिस्तानी बेताशा, इंडियंस तो खासतौर पे बेताशा रिच हैं, एक्सट्रीमली रिच हैं, बड़े बड़े उनके वो जो हैं वहां पे बिजनेसेस हैं, गोल्ड के सारे बिजनेस पे छाए हुए हैं, कपड़े का बिजनेस है उस पे, फिर देन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके बड़े बड़े, एंड यू नो ह्यूज बिजनेस कंसर्न्स हैं, चार चार सौ
प्रॉपर्टीज बहुत हैं,
प्रॉपर्टीज हैं, चार चार सौ स्टोर है पूरे मिडल ईस्ट में माजिद भाई, इतने इतने बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के वहां पे। और ये जो आपने पाम जो है, पाम की जिस वक्त ये दुबई के अंदर उन्होंने बनाया था पाम जुमेरा, और उसकी जब सेल्स शुरू हुई थी तो सबसे पहले तो लेने वाले जो रिचेस्ट लोग थे दो थे, एक तो रशियंस थे और एक इंडियंस थे, तो और बड़े एक्सपेंसिव, और आप उनको देखें जाके और क्या लाइफ स्टाइल है उनका।
जितने फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स वाले हैं वो तो बिजनेसमैन को छोड़े भी,
उन्होंने बड़ों ने लिए हैं वहां पे, बहुत सारों ने लिए हैं, जितने तो घर के बाहर जो है शिप खड़ी हुई है, घर के ऊपर जो है
टॉलेस्ट बिल्डिंग है, क्या
तैयारा खड़ा है, बुर्ज खलीफा
में जो बड़े बड़े
ऊपर स्वीट्स लिए हुए हैं, स्वीट्स जो लिए वो, और बड़े उसके अंदर जबरदस्त बहुत ही अप मार्केट जो है रेस्टोरेंट्स खोले हुए,
हमारे भी सियासत जैसे के, बहुत नहीं है वहाँ पर,
जैसे कि अरमानी वगैरह जो हैं, अरमानी ने, और आप देखें कि वो उनके कैसे गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उन लोगों के भी। आपको पता है अरमानी रेस्टोरेंट जो है बुर्ज खलीफा में, इट इज ऑल ब्लैक, क्लासिक लुक उन्होंने दी हुई है ना, बहुत ही हाई एंड ब्लैक वेलवेट क्लासिक लुक है। तो अगर आपको वहां पे अपना इवेंट करना है, जैसे कि आप दूसरे होटल्स में जाते हैं, आप कहते हैं भाई हमको मेन्यू दिखाओ क्या है, तो हमारे जो आज शादी है या हमारा रिसेप्शन है या ये है, या हम कोई ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या बुक लॉन्च करना चाहते हैं या कुछ भी, तो हमारा मेन्यू आप दिखाएं, एनी 5-6 स्टार होटल वुड ऑफर कि हाँ जी ये तो आप उसमें से चूज करते हैं कि ये मेन्यू होगा, और आपने पीछे फूल लगाने हैं और आपने स्टेज ऐसी बनानी है, तो एवरीबडी सेज यस। अरमानी होटल में अगर आप जाएं और आप कहें जी कि हमको अपना इंडियन या पाकिस्तानी मेन्यू चाहिए, वो कहते हैं जी नहीं, जो हमारा ये है यूरोपियन मेन्यू यही हम सर्व करेंगे आपको। अच्छा जी इसके अंदर हम फूल बूटे लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अच्छा जी क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ ये जो चेयर्स हैं इनको थोड़ा सा या तो थिएटर स्टाइल में कर देंगे या बिल्कुल सीधा लगा देंगे, दैट्स अबाउट इट।
जो है सो है,
जो है सो है,
खेलना खेलो, नहीं खेलना नहीं खेलो।
ये हमारा स्टाइल है, दिस इज आवर यू नो स्टाइल, और हम इसके अंदर कोई बिल्कुल, और इतना एक्सपेंसिव है कोई वो माजिद भाई, और लोग मरे जाते हैं वहां पे अरमानी रेस्टोरेंट के अंदर जो अपना इवेंट करने के लिए, एंड दे डोंट बज एट ऑल। एक बोटी आप कह देना कि ये बोटी इसके ऊपर जो आपने लगाई है इसको जरा ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे कर दो, कहते नहीं करेंगे, ये जैसे हमने बनाई है वैसे, क्योंकि ये बहुत हाई एंड यूरोप का एक शेफ है जिसने ये की है, तो हम इसको नहीं कर रहे, ये उसकी ये क्रिएटिविटी है।
बस मैं बता दूं आपको कि आप इंडियंस का बता दें कि भाई इंडियन के ये उन्होंने लिया, हमारे सियासतदानों ने तो आम चीज है उनके लिए, तो ये अरमानी वगैरह जाते रहते हैं वो तो, और बुर्ज खलीफा में जो उनके तीन अपार्टमेंट्स हैं है ना, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए।
लूटे में
लूटे किसने कहा है,
लूटे अच्छा लूटे अच्छा
मैं लूटे तो नहीं कहा,
लूटे नहीं लूटे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा
खानदानी अमीर,
अच्छा 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 अच्छा, वो मुझे पता नहीं था सिंध की जो जमीनें उनके अंदर से सोना उगलता था, वरना मैं भी सिंध में एक जमीन ले लेती जाके, मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट ले लेते हम भी हैं,
लेते खानदानी अमीर जो है वो लेते हैं हमारे, अच्छा अच्छा हमारे पाकिस्तान की सियासतदानों को ऐसा ना कहें,
ऐसा ना कहें, बिल्कुल बिल्कुल
कतई तौर पर ऐसा ना कहें।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। एक तो हमारे इसहाक डार साहब भी हैं एमरेट्स हिल्स में, वाह 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 क्या घर है इनका वहाँ पे, ओ हो
अच्छा,
और क्या मेड्स हैं और क्या स्टाइल है और क्या है, ओहो आप देखें सही, एमरेट्स हिल्स में रहते हैं इसहाक डार साहब।
अच्छा
जी जी जी,
क्योंकि वो स्पेशल इलाका है वो,
हाँ वो ये सारे हाई एंड एरियाज है ना, ये अरेबियन रेंचेस और ये जो है ये वाले, ये सारे इस तरह करके ये चार पांच जो है ना, ये बड़े हाई एंड एरियाज है ना, तो बस उसमें इनका भी है और भी लोगों के हैं। बेनजीर को तो खैर शेख मोहम्मद ने खुद ही दिया हुआ था, वही वहीं पे एमरट्स हिल्स में, एमरट्स हिल्स में वही वो घर दिया हुआ था, शेख मोहम्मद ने दिया हुआ था वो तो।
अच्छा,
उन्होंने तो वो भी रहते थे वहां पे, तो वाजी क्या बात,
देख लें बस आप
स्टाइल,
पाकिस्तानियों को पीछे ना छोड़े आप।
हाँ,
हम लोग तो खानदानी रिच लोग हैं,
जियो वालों के भी घर वहां पे हैं,
देख लें अभी और सोचें आप, और मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोच लेंगे और किस किस के घर है वहाँ।
मैं आरिफ नकवी साहब का था वहाँ,
देख लो अभी और बहुत आएंगे। आज ही मुझे किसी नकवी साहब
नाम नहीं याद आ रहे मुझे, when I was in Dubai, I had a फुल लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड हमारे जर्नैल और फलाने थे टमकाने जिनके वहाँ पे घर थे।
वैसे आज किसी नकवी साहब ने फोन किया है मुझे,
अच्छा अच्छा,
तो मैं समझ रहा था कि
आरिफ नकवी साहब जेल में बेचारे, वो
उसने वहां से फोन किया, उन्होंने
लंदन से
मुझे कवर करो।
अच्छा अच्छा अच्छा,
तो
बड़े अच्छे बंदे थे बेचारे, फंस गए
देखते ही, मैं समझा, मैंने कहा नफीस साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं तो खड़ा हो गया।
सम वो जो होता है ना, वो जो लोग आपकी बैड आए आप पे आ जाती है ना, और आपके लोग जो है नजर लगती है, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, वरना ही वॉज डूइंग ब्रिलियंटली। और बड़ा इमरान खान की जो कैंपेन्स थी उसके लिए बड़े पैसे देता था, शौकत खानम के लिए देता था, के इलेक्ट्रिक की बड़ी वो कहता था, मैं मुझे दे दें आप, मैं सर इसकी हालत ठीक कर,
के इलेक्ट्रिक तो वो रियाज मलिक ने भी कहा था मुझे दे दें, उसको दे देना चाहिए था उसको,
मलिक रियाज को
दे देना चाहिए था,
क्योंकि मलिक भाई देयर इज अ लॉट ऑफ, एक्चुअली आवर पीपल डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्टाइल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है ना उसका स्टाइल और होता है, जो एक अनपढ़ आदमी होता है उसका स्टाइल और होता है,
उसका कोई स्टाइल ही नहीं होता।
नकवी जो था ना वो तो ही वॉज इन द क्लास ऑफ यू नो बिल गेट्स, यानी उसकी मुलाकातें ही उनके साथ थी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ और ओबामा के साथ, और ओबामा की जो थी वो मतलब ही वॉज इन दैट लीग, ठीक है, ही वॉज इन दैट लीग। तो ये तो मतलब आपको फिर पता ही है, देयर इज अ डिफरेंस इन स्टाइल, यू नो
इनकी भी लीग है, परवाह ना करें आप,
अच्छा अच्छा
ऐसी बात ना करें,
चलो ठीक है। ये डिफरेंस बस वैसा ही है कि एक जो है आईटी स्पेशलिस्ट चीचू की मलिया में बैठा है और एक सत्या नडेला है ना, सत्या नडेला है वो उसका माइक्रोसॉफ्ट का, सो दैट इज द डिफरेंस, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मेरा बेटा भी मुझे ये जुमला कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, मैं कहती हूँ नहीं भाई तुम बताओगे तो पता चलेगा ना ऐसे।
साहब अब से कुछ ही देर बाद 7:08 पे साहब ब्लू जेज एंड न्यूयॉर्क, एंड प्लीज डोंट से,
वो नीले जे
प्लीज डोंट से,
छोटा और मोटा
अभी आएगा वो, प्लीज डोंट से, डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग,
नहीं नहीं, आई एम जस्ट जिपिंग,
मैं यहां से आपसे खुदा हाफिज, आपसे खुदा हाफिज। आज मगरिब की आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, मैं समझ गया। आज मगरिब की आजाद 7:09 पे होगी था, और अब से थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए चलूंगा टॉप ऑफ द आवर, हमारे स्पॉन्सर्स के पैगाम, फिर नातिया कलाम, फिर साहब मगरिब की अजान, द प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान। चलते चलते एक गुजारिश है, इल्तिजा जो हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, कि अपनी दुआओं में हमेशा मैं याद रखा करें, हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, खास तौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफ़र मुकम्मल करके इस दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके जला उनके गुनाहों को बख्श दे और उन्हें जन्नत फ़िरदौस में लगा था फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह तआला कल फिर आपसे मुलाकात, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 6478724900, मॉन्ट्रियल 5149076288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com, लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
From helmets to sunscreen, we do everything we can to keep our kids safe. So how can the COVID-19 vaccine help protect them? COVID-19 vaccines can help keep children safe from severe illness and potential long-term effects of the virus. Millions of children in Canada and around the world have already been safely vaccinated. Help protect your child. Book their appointment at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिसने तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहेंगे
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000